दूसरी चीज जिससे मैं और आप शैतान से बचें, किताब और सुन्नत पर सख्ती से कायम रहना। याद रखिए, शैतान को सबसे ज्यादा डर किताब और सुन्नत से लगता है। सिराते मुस्तकीम के रास्ते में जब बैठता है ना, तो वो इन्हीं दो चीजों के डर से हम पे हमला नहीं करता। कुरान पाक की आयत लिख लीजिए अगर आपका दिल चाहे तो, आप इससे बाद में इंशाअल्लाह ताला फायदा ले सकते हैं। सूरत अल अनाम 153 में अल्लाह सुबहान ताला ने शैतान का ये ट्रिक हमें सुनाया है। वन हाजा सिराती मुस्तकीम फत्तबेउहु वला तत्तबियु सुबल फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला कहते हैं, ये दीन मेरा रास्ता है जो सीधा है, इस पर चलो, दूसरे राहों पर मत चलो। ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से जुदा करेंगी और अल्लाह तुम्हें इसका हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगारी करो। इसी तरह एक हदीस इब्ने मसूद से कि एक दफा अल्लाह के नबी ने जमीन पर एक लकीर खींची। आप अपने नोट्स में खींचिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ऐसे एक सीधा खत खींचा, फरमाया ये अल्लाह का सीधा रास्ता है जिस पे अब आप माशाल्लाह चलना चाह रहे हैं ना। वो हम सब सारी जिंदगी चलते हैं, लेकिन दीन सीखते भी तो इसीलिए ना कि हम सीधे रास्ते पर रहें। फिर आपने इस लकीर के दाएं और बाएं कुछ और लकीरें भी खींच दी। फरमाया ये बहुत से रास्ते हैं जिनमें से हर रास्ता एक शैतान का रास्ता है। यानी अगर आप इधर नोट्स में एक सीधी खींचे, उसके आगे अल्लाह, उस पे चलेंगे तो अल्लाह, फिर एक इधर, फिर एक इधर, और इधर शैतान। यानी इस सीधे रास्ते को छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद शैतान बुलाएगा। फिर आपने उसके बाद तिलावत फरमाई कि वन हाजा सिराती मुस्तकीम फत्तबिउहु, तो अपने दीन पे जम जाए। अकीदे की पुख्तगी शैतान को बहुत डराती है। सबसे पहले शैतान बंदे के अकीदे में झोल डालता है, कहता है इसका अकीदा खराब कर दो ना, फिर जो मर्जी अमल करें। उसको पता है कि इसके कबूल कोई नहीं होने। आज खराब अकीदों के साथ लोग कसरत से अमल कर रहे हैं नेकियों के, चैरिटी भी करते हैं, खिदमत खल्क भी करते हैं, कुरान भी हिफ्ज करते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, चंदे भी देते, पढ़ते पढ़ाते भी हैं, 10-10 साल के कोर्स भी करवाते हैं, पर अकीदा खराब है। तो शैतान का सबसे फर्स्ट गोल, अटमोस्ट, अकीदे की खराबी। जब बंदा अकीदे की खराबी से बच जाता है, कहता है चुप, आउज़ु बिल्ला, मैं नहीं तेरी मानता, तो सेकंड स्टेप पे भी शैतान बंदे को शिर्क में मुब्तला करता है। यानी अकीदे की खराबी में अल्लाह को ना मानना कह लीजिए उससे बढ़ के, फिर कहता है चलो ठीक है, कुछ बातें ठीक रखो, कुछ गलत करो। जब बंदा उससे भी बच जाता है अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से, तो ये बिदात में डालता है। बिदत क्या है ये भी आप बच्चे हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लें कि नबी सल्लम ने जो दीन दिया था वो दीन है, और उसके बाद नेकी समझ के कोई भी काम करें जो आपने नहीं किया तो वो बिदत है। तो भी शैतान दीन से तो पीछे कर देता है और उसकी जगह मनमानी नेकियां करवाता है कि चलो कुछ तो नेकियां करो। अगर बंदा उससे भी बच जाए तो फिर फोर्थ लेवल पे कबीरा गुनाहों में से किसी गुनाह में डाल देगा, क्योंकि उसको पता है रूट से पकड़ो इसको। क्योंकि इन चारों चीज़ों में कोई भी खराब हुई ना, तो हज नमाज रोजे कोई नहीं कबूल होते। कबीरा से बंदा बच जाए ना, तो सगीरा में डलवा कर इसरार करवाता है, चलो ना छोटा सा गुनाह है, चल दोस्तों की खुशी है, चलो बच्चे की खुशी है, चलो मियाँ ही कह रहे हैं ना, चलो फिर क्या फर्क पड़ता है, चलो वेकेशन पे आए हुए, ये बातें सिखाता है। और जब बंदा कबीरा और के छोड़ के सगीरा का भी आदी हो जाता है ना, तो शैतान हक की तरफ बुलाने वालों के बारे में बदगुमानियां डालता है। ये इसका छठा स्टेप है। इस पे पूरा लेक्चर मौजूद है, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से शैतान हमें, एक से हम बचते हैं दूसरे में, दूसरे से बचते हैं तीसरे में, यानी नेकियों के काम करने वालों के खिलाफ प्रोपेगंडे शुरू करवा देता है। और बास दफा फिर शैतान बंदे से 100 नेकियां करवाता है एक गुनाह करवाने के लिए। एतमाद लेता, नहीं नेकी करो, शाबाश, मैं कि तुम्हें गलत थोड़ी कहता हूँ, ये भी नेकी है, ये भी करो, ये भी करो। जब बंदा इस पे एतमाद करता है ना, 10-12 नेकियां कराता है अच्छी अच्छी जो इसको लगता है कि कम खतरनाक है। वजीफे कराता है, हजारों लाखों बार पढ़वाए का कोई जुमला, हम कहेंगे देखो कितना अच्छा हमारा खैर ख्वाह है। जब आप उस पर पूरा एतमाद करेंगे ना, अंदर से कोई एक ऐसा आपको वार करेगा कि आपको हराम में डाल देगा। जी इसके रास्ते बहुत साइकाट्रिस्ट है बड़ा। और याद रखिए, शैतान इंसान से उम्र में बहुत बड़ा है। एक जुमला लिख लें, शैतान के मुकाबले में इंसान ऐसे ही है जैसे कल का बच्चा। ये आप वही चौथे रुकू में पढ़ेंगे सूरह बकरा के इंशाल्लाह, कि आदम तो इसकी आंखों के सामने पैदा किए गए थे, ये तो उससे पहले जिन्नों का भी दौर देख चुका था। तो ये बहुत नफ्सियाती मतलब तौर पर बंदे को जानता है, कमिटेड बहुत है शैतान, ये भी लिखें इसके बारे में। जिस बात की ठान लेते ना, दावे करके सो नहीं जाता, सोते जागते में। और सबसे बड़ी बात है, काम वक्त पे शुरू करता है। कैसे? हदीस में आता है कि बच्चा माँ के पेट से आने की तैयारी में होता है, और शैतान अपने चीलों चांटों को लेके वहां पहुंच जाता है। जैसे नानी दादी टोकरी लेके जाती है ना बच्चे के लिए कपड़े लेके जाएं, वो भी पहुंचा होता है। इधर बच्चा बाहर आया, शैतान उसकी ये पसली, ये रेब है ना, इसके अंदर उंगली चुभोता है। ये जो बच्चा रोता है ना, वैसे तो एक मेडिकल रीजन भी समझ आती है, लेकिन एक रूहानी और स्पिरिचुअल वजह यह है कि शैतान के कचोके से रोता है। तभी आपने कहा, वो मैं आगे एक लॉन्ग लिस्ट आपको बताऊंगी, अगर आपका दिल चाहा तो सुना दूंगी, नहीं तो बाद में कभी हो जाएगा, कि शैतान किस तरीके से बंदे को बहकाता है, कि इवन शौहर बीवी के ताल्लुक से पहले भी दुआ सिखा दी, कि अल्लाह मजन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मार सकता ना, कि अल्लाह हमें दोनों को इस ताल्लुक में भी शैतान से बचाना, और अगर इसके बाद कोई हमारी औलाद आ गई तो उसको भी शैतान से बचाना। आज हम औलादों के बिगड़ने का तो शिकवा करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं कि जो इन दुआओं का इख्तमाम करते हैं? फिर अगर बच्चों के ऊपर हमारा काबू नहीं है तो क्या होगा? फिर इसी तरह से आप देखिए कि शैतान जो है, उससे मुकाबला करना हो तो उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, विल पावर को स्ट्रांग करें। मैं इसके फंदे में नहीं आऊंगी। फिर एक और टिप नोट करें, उन सारे शकूकों शुबात को फौरन खत्म कर दें जो शैतान को आपके ऊपर मुसल्लत करें, शक डालता है। ये इसका एक बहुत बड़ा ट्रिक है, जैसे अभी मैंने बताया ना, मशकूक कर देगा, इनकी नीयत खराब है, ये इनके कोई अपने मोटिव्स हैं, ये इसमें ये मसला है, यानी बदगुमानियां पैदा करता है। जहां शक या बदगुमानी आए, फौरन छोड़ दें। एक मौके पे नबी सल्लम अपनी बीवी को एतिकाफ की हालत में घर छोड़ने जा रहे थे, रात का वक्त था, तो करीब से कुछ मर्द थे, तो आपने उनको देख के कहा कि देखो ये औरत मेरी बीवी सफिया है। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, आप हमें ये सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? क्या हम आपके बारे में गुमान करेंगे कि रात को पता नहीं किस औरत के साथ है? तो आपने फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, का तुम ना भी सोचो, शैतान जिस्म में खून की माने दौड़ता है, मुझे खौफ था कि कहीं वो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में बदगुमानी ना डाल दे। तो जिस शख्स के बारे में कोई बदगुमानी आए, आज देखिए लीडर से बदगुमान, हम तो अल्लाह माफ करे, बींग अ नेशन इस वक्त बदगुमान उम्मत है, सियासतदानों से लेकर मजहबी रहनुमाओं से, जिनसे फायदा लेते हैं उनसे भी बदगुमान है, तो ये शैतान का एक ट्रिक होता है। तो जब भी कोई ऐसा शुबा आए, उसको जाके दूर कर लें, भाई बताएं मुझे ये मसला पड़ा है, आप मुझे जरा बताइए कि ये ठीक है कि नहीं है। तो लिहाजा शक को दूर कर लेना चाहिए। पांचवी चीज क्या है, कि हमेशा मुसलमानों के गिरोह के साथ जुड़े रहे, कि अब ये गिरोह से मुराद को फिरका नहीं है, यानी अकेला बंदा। इस वक्त अगर आप घर में बैठे होते हैं ना अकेले में, तो शैतान ने आपको 10 दफा टेक लगाने को कहना था, जमाइयां आनी थी, नींद आनी थी, और पता नहीं आगे जाके क्या कुछ होना था। तो आप जिसको आप कह सकते हैं कि इज्तमाइयत में रहें, टीम में रहें, गिरोह के साथ साथ रहें, जो हक का साथ देगा अल्लाह शैतान को उससे दूर कर देगा। बहुत कम होता है फिर शैतान उनमें आए, वो और मसलों में बहुत खराबियां हो जाएं जो भी हैं, लेकिन जरूरत है इस बात की कि एक इंसान अपने ऊपर रहे, और ये चीज आज उम्मत के तफरकों को खत्म करती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा ही खूबसूरत फरमान है उनके बारे में, इब्ने उमर जो उनके बेटे हैं, कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुल्क शाम के जाबिया नाम के एक मुकाम पर हमें खिताब किया, यानी बाप की बात सुना रहे हैं। क्या कहा? ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान इसी मुकाम पर खड़ा हूं जहां कल अल्लाह के नबी खड़े थे, और फरमाते थे कि तुम मुसलमानों के गिरोह से जुड़े रहना और तफरकाबाजी से बचना, क्योंकि अकेले शख्स के साथ शैतान लगा रहता है, और जब दो हो जाते हैं तो वह इनसे दूर हो जाता है। तो उम्मत की वाहदत को पामाल ना करो, ये इस बात का खुलासा ले लीजिए। बातें तो और बहुत सारी हैं। तो आज के दौर में शैतान का जो सबसे बड़ा एक वार उम्मत पे है, वो फिरकावारियत का है। फिर छठी चीज़ क्या है शैतान से बचने की? नमाज की सफ़ों में खाली जगह ना छोड़ें। आपने फरमाया कि सीसा पेलाई दीवार की तरह बना लो, क्योंकि खाली जगह में शैतान आ जाता है, और शैतान भेड़ के बच्चे की शक्ल में कहा तुम्हारे दरमियान आकर दाखिल होगा। इन सब हदीसों के रेफरेंस भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर आपका दिल चाहेगा बाद में लेने को तो मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन बस अभी मैं चाहती हूँ कि आप इससे डरें, खौफ महसूस करें। तो जब शैतान खाली जगह देखता है, कभी स्याह बकरी के बच्चे की सूरत में आता है, ये सब अबू दाऊद, नसाई और इब्ने खुजैमा की मुख्तलिफ रिवायतें, उसके अंदर से ये बात मिलती है। आपने फरमाया अपने कंधों को कंधों के बराबर रखो, दरमियानी खला को बंद करो, भाइयों के हाथ में नरम हो जाओ, यानी अपने मुसलमानों के लिए सॉफ्ट स्पोकन हो जाओ, उनके लिए बदगुमान ना हुआ करो, और शैतान के लिए खाली जगह ना छोड़ो। जो सफ में जुड़ता है अल्लाह ताला उससे जुड़ता है, और जो सफ को काटता है अल्लाह ताला उसको काटता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट थिंग जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम शैतान से बचेंगे, गैर महरम औरतों और मर्दों का खलवत में ना मिलना, यानी डोंट बी अलोन विद एनी पर्सन, यानी औरत है तो मर्द, मर्द है तो औरत, अकेले ना हो। नबी सल्लम ने फरमाया कि ला यखलुवन्ना, ना अकेले हो रजुलुम भी इमरातिन, कोई मर्द किसी औरत के, इल्ला काना सालिसहुम शैतान, जब एक मर्द और औरत इकट्ठे होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। आपने फरमाया तुम में से कोई अजनबी औरत के साथ तन्हाई में बगैर महरम के ना मिले, ठीक है। फिर इसके बाद आठवां तरीका, औरत हत्तुल बसा कोशिश करे कि तन्हा घर से बाहर ना निकले। हदीस है, मैं नहीं बोल रही, ये सारी हदीसों के नंबर इकट्ठे ही बोल देती हूँ, ये तिर्मिजी की मुख्तलिफ रिवायतें, और आप जो पढ़ रही हूँ ये तिर्मिजी की रिवायत है, पहली जो थी ये बुखारी और मुस्लिम की थी। आपने फरमाया औरत पर्दे की चीज़ है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान इसकी ताक में लगा रहता है, देखता है इसको कि अब कहाँ से बहकाऊँ। फिर नवा तरीका शैतान से बचने का कि हर अमल में शैतान की मुखालफत कीजिए, ढूंढें कि किस काम से शैतान को खुशी होगी वो छोड़ दें, जिससे वो नाराज होगा उसको कर लीजिए। हारिस बिन कैस कहते हैं जब तेरे पास शैतान नमाज पढ़ने की हालत में आए और कहे तू तो रियाकारी कर रहा है, यानी कभी ऐसा होता है ना दूसरों के सामने नमाज पढ़े तो शैतान कहता है अच्छा जी तू तो बड़ी रियाकारी कर रहा है, तो कहा तू अपनी नमाज को और तवील कर दे, यानी उसकी बात को ना सुन। ये तलबीस इबलीस के पेज 37 पे बात मौजूद है। तो शैतान को अच्छी लगने वाली बातें छोड़े, मसलन बाएं हाथ से खाना, डोंट ईट विथ लेफ्ट हैंड, खाना पीना, और इसमें वही बात आ गई कि फिर एक हाथ में कोक है तो दूसरे में बर्गर है, ऐसा ना करें, राइट हैंड से खाएं, राइट ही से पिएं। इसमें एक सिस्टर की बड़ी खूबसूरत शेयरिंग आई थी, इंशाल्लाह ताला किसी वक्त आपसे शेयर करूंगी। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की और उसने उनकी ज़िंदगी में एक बिग चेंज रखा। दाएं हाथ से चीज़ें लें, बाएं से ना लें, क्योंकि अब हमने इससे बचना है ना, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह एक जूती पहन कर चलना, ये शैतान को बड़ा अच्छा लगता है, तो दोनों जूतियाँ पहने। बात बच्चे नहीं होते एक पाँव में जूती पहन के वो लंगड़ा के चलने लगते हैं, उनको मना कीजिए शुरू से कि ये अच्छा तरीका नहीं है। हाँ जूती टूट जाए एक तरफ की तो दूसरी भी उतार लें, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया अल्लाह के नबी की रिवायत कि अगर तुम में से किसी के जूते का तस्मा टूट जाए तो वो एक जूते में ना चले जब तक कि उसकी मरम्मत ना करा ले। ये भी एक शैतान की चाल है, और बहुत वाज हदीसें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। फिर इसी तरह से एक तरीका जिससे शैतान से डरता भी और आप बड़े खुश होंगे उससे, कैलूला कर ले। कैलूला क्या होता है, दोपहर को थोड़ा सा सोना, दोपहर के खाने के बाद, लेकिन क्लास में नहीं सोना, ब्रेक के बाद नहीं सोना। फरमाए शैतान कैलूला नहीं करता, तुम करो। शैतानों को कैलूला अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुसलमानों को सिखाया गया। फिर इसी तरह शैतान से बचने के लिए इसराफ से बचिए, दिखावे के लिए इसराफ करने के लिए चीज़ों को खरीदना शैतान आपका भाई बनता है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कान इख्वान शयातीन, इससे बचने की जरूरत है। बेजा माल ज़ाया करना, शैतान इससे खुश होता है। कसरत से चीज़ों को जमा रखना, नबी सल्लम से पूछा गया कि घर में कितने बिस्तर होने चाहिए, तो आपने फरमाया एक बिस्तर मर्द के लिए और एक बिस्तर औरत के लिए और एक बिस्तर मेहमान के लिए, यानी एक्स्ट्रा रख लो, चौथा बिस्तर शैतान के लिए होता है। अब चौथे के बाद हमारे तो मरहले 20 होंगे, शादी में कितने बिस्तर दिए, 20 बिस्तर दिए मेरी माँ ने, तो वो आपके दो मियाँ बीवी के हो गए, तो एक मेहमानों का हो गया, या घर में जितने भी लोग हैं, तो 10 बिस्तर तो आपने शैतान के लिए रखे हुए हैं। मुराद ये कि बेकार चीज़ें ज़ाया ना करो। फिर इस तरह शैतान से बचने का तरीका, हाथ से लुकमा गिरे ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। शैतान उस वक्त बहुत छोटा सा मक्खी के सर जितना बन के चला जाता है, उसको दुख होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अच्छे लुकमे को हमसे दूर करता है। जल्दबाजी शैतान को अच्छी नहीं लगती, जो लोग जल्दबाज होते हैं ना, हाइपर, शैतान बड़ी जल्दी उनके ऊपर कब्जा करता है। इस हाइपरनेस को भी ज़िंदगी से इंशाल्लाह निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आप खुद अपने अंदर एक ठहराव महसूस करेंगे। फिर सिर्फ जमाई लेते वक्त मुंह पे हाथ रखें तो आप शैतान से बच जाएंगे, क्योंकि जमाइयों से फिर सुस्ती आती है और शैतान जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। फरमाए जब जमाई है तो हर मुमकिन कोशिश तक रोकें और मुंह पे हाथ रखें और हाँ की आवाज़ ना निकालें, जब बंदा हाँ कहता है ना, आवाज आ जाती है एक मुंह से, तो शैतान बैठ के हंसता है उस वक्त कि ये बंदा देखो मेरी पसंद के काम कर रहा है। फिर इसी तरह से घर में नजर आने वाले सांपों को ना मारना। आपको पता है कि शैतान सांप की शक्ल में भी आते हैं। अल्लाह ना करे कभी घर में दिख जाए तो उसको ऊंची बात से कहें कि अगर तू शैतान है तो चला जा, और अगर अल्लाह की मखलूक है तो मैं तुझे कुछ नहीं कहता, तू चला जा। यानी बाज दफा शैतान इस रूप में भी आ जाता है। एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सिर्फ इधर अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी चांस मिल जाए तो ना तो डरें और ना शोर मचाएं ना कुछ, बल्कि उसको कहें तुम निकल जाओ, और अगर वो कोई जिन होगा तो निकल जाएगा। फिर इसी तरह बिलों और सुराखों में पेशाब करने से गुरेज करना चाहिए। बच्चों को समझाएं, खेलने जाते हैं, जंगलों में हैं, बाहर ग्राउंड में, तो खुली जगह पे पेशाब नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो बिल किसी ऐसी मखलूक की जगह हो और वो फिर तंग करे। फिर इसी तरह एक बहुत प्यारी सुन्नत है जो मैंने जब भी किसी को बताई उनको नहीं बताती। वुजू किया आपने? सब करते हैं ना, पूरा वुजू कर लें, उसके बाद लेफ्ट हैंड में एक पानी का छींटा लें ऐसे हाथ में, और जैसे यूं खड़े हैं ना, बस ऐसे अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ एक दफा करते हैं। हदीस में आता है कि इससे शैतान नमाज में वसवसे नहीं डालता, और यह हदीस सामने मेरे लिखी हुई है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है, कि मेरे पास जिब्रील आए और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप वुजू कर लें तो जेरे जामा पानी की छींटे मार लें, यानी पानी को उधर नीचे फेंके तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और यह हदीस तिर्मिजी में मौजूद है, और भी इसके बहुत सारे रेफरेंसेज हैं। और जब भी किसी को नमाज सिखाऊं तो मैं ये बात जरूर बताती हूँ, और आदत इतनी हो गई है कि अब वुजू के बाद बाज़ दफ़ा ज़हन में भी ना हो लेकिन खुद बहुत हाथ जो है पानी के छींटे में चला जाता है। इससे नमाज में वसवसे भी फिर नहीं आते। मतलब ये कि वो हर मुमकिन तरीके से आपको देख रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि आज के सेशन की एंड की बातें होंगी, कि अल्लाह से पनाह मांगे कि शैतान से मुझे बचा ले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। शैतान से पनाह मांगना अल्लाह ने हमें खुद सिखा दिया। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, आज शुरू में मैंने वैसे ही बोला था, अब रेफरेंस नोट कर लीजिए, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 200 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाहि इन्नहु वस्समीउल अलीम। अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करें, सुनने वाला है वो। तो क्या पता चला कि आउज़ु बिल्ला पढ़ने से शैतान से एक इंसान अपने आप को महफूज करता है? गुस्सा आ रहा है तो शैतान से बचने के लिए आउज़ु बिल्ला पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। सूरत मोमिनून की आखिरी आयतों में दुआएं सिखाई गई हैं। ये याद रखिएगा कि शैतान आपको मुझे हर मुमकिन तकलीफ देना चाहता है, दुखी करना चाहता है, उदास करना चाहता है। उसका अल्टीमेट गोल क्या है? कि आप जन्नत से महरूम हो जाएं। जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो आपका नेकी भी नहीं करने को दिल करेगा। जैसे अब आप कुरान का कोर्स करने बैठे ना, तो शैतान कहेगा बहुत मुश्किल, बहुत लंबा, बहुत लंबी कमिटमेंट, बोर होते हैं, बोलने नहीं देते, सेलफोन नहीं चलाने देते, ये है वो है। तो ऐसे वक्त में आप सोच लें कि ये शैतान की बात है। बहुत सारे लोग शौक रखने के बावजूद भी वो काम नहीं कर सकते। तो आपको मुझे आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते हुए अपने आप को महसूस कराना है कि नंबर एक, मेरी नज़रें अल्लाह पे हैं, मेरी अल्लाह की कुदरत बहुत है। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ ना, यानी जब ये जुमला क्या हो ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मुझे ऐसे लगता है मैं किसी खुले मैदान में जा रही हूँ, मेरे पीछे कोई दुश्मन लग गया, और मुझे लगता है बस पीछे से उसने आके मुझे दबोचना है, और आगे मुझे कोई बहुत प्यारा अपना बाप, कोई बुजुर्ग ऐसा नजर आ जाता है कि मैं जाके उसके पास छुप जाती हूँ, कहती मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा दुश्मन पीछे है। तो माँ बाप या रिश्तेदारों में कोई बड़ा भी हो, वो क्या बचाएगा आपको किसी से? शर्त है इस आउज़ु बिल्ला की, ये लिखें, ये आपसे सवाल पूछूंगी बाद में, कि आउज़ु बिल्ला फायदा कब देती है? अच्छा, यहाँ एक लफ्ज़ लिख लें, इस्तेआज़ा बोलते हैं इसको। आउज़ु बिल्ला पढ़ने को इस्तेआज़ा, अलिफ सीन ता अलिफ ज़ाल हा, इस्तेआज़ा कहते हैं अल्लाह की पनाह में आना। ये फायदा कब देगी? जब आपके दिल में अल्लाह की बड़ाई होगी, और अल्लाह के माँ सिवा की पनाह में नहीं आना, ये दूसरी शर्त है उसकी। यानी इस जुमले को आप असाइनमेंट में भी नोट कर लें, कि आउज़ु बिल्लाह पढ़ने की शराइत क्या है। नंबर एक, दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई का यकीन हो। दूसरी बात है, अल्लाह के सिवा किसी की पनाह नहीं। यानी आप ये भी कह रहे हैं कि आउज़ु बिल्लाह, और साथ कहते हैं कि आउज़ु बिल पीर, किसी पीर साहब की पनाह में आ जाओ। ये जो इमाम ज़ामिन का लफ्ज़ लोग बोलते हैं, कभी सुने? इमाम ज़ामिन, इमाम साहब की पनाह में आना, ये शिर्क है, ठीक है। तो पनाह तलब करनी है उससे। और इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि इंसानों में से किसी की पनाह में आना ये शरण हराम है। हाँ, अल्लाह के साथ जैसे हम कहते हैं ना आउज़ु बिल्लाह, तो आपको तो हम क्या कह सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, आउज़ु बिर्रहमान, आउज़ु बिर्रहीम, अल्लाह के जो नाम है ना, अस्मा और सिफात, उसके साथ भी पनाह ले सकते हैं। आप सूरत मरियम में पढ़ेंगे, जब तन्हाई में फरिश्ते को देखा था बीबी मरियम ने, तो क्या कहा था, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे, अगर तू नेक बंदा है तो चला दे, इन कुंत तकिया, यानी तू मेरे पास ना आना, ठीक है। फिर इसी तरह से अल्लाह के नबी की दुआ आपने भी सीखी है, सुबह शाम की दुआ में आप पढ़ते हैं आउज़ु बिकलिमात इल्लाह तामत, है ना, ये दुआ सबको आती है। इस दुआ के ऊपर इमाम अहमद कहते हैं कि अल्लाह का कलाम गैर मखलूक है, और वो कहते हैं कि मखलूक से नहीं, यानी अल्लाह का कलाम है ना जो कुरान, इसकी भी पनाह में आप आ सकते हैं। ये एक लंबी बहस है, यानी कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह ताला का कलाम है। तो बस 5-6 नुक्ते नोट कर लें कि कुरान पढ़ते वक्त औज़ु बिल्लाह पढ़ी, और कब कब पढ़नी है। नंबर 1, बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़नी होती है। मेरे साथ दोहराइएगा एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों यानी शयातीन और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ। तो बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दीजिए, खुद भी पढ़ें, उनको भी सिखाएं कि बाथरूम यूज़ करने से पहले। दूसरा कौन सा मौका है शैतान से पनाह मांगने का या इस्तियाज़े का, गुस्से के वक्त। जब कभी गुस्सा आ जाए तो क्या करो, सुलेमान बिन सर्द कहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने दो लोग लड़ रहे थे, तो आप उनके पास बैठे थे, एक शख्स दूसरे को गुस्से से गालम गलौज कर रहा था, उसका चेहरा गुस्सा हुआ, तो आपने फरमाया अगर मैं इसको एक कलमा बता दूं और वो ये कह ले तो जो गुस्सा इस पर सवार है वो जाएगा। और वो कलमा क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो लोगों ने उस आदमी से पूछा क्या तूने सुना नहीं कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, तो उसने जवाब दिया मैं पागल नहीं हूँ, यानी गुस्सा सवार था ना उसके ऊपर, तो उसके मुंह से जो भी निकल रहा था वो था। तो गुस्सा आपको आया या किसी और को आया हुआ है, यकीन करें आजमा के देखें, शौहर को गुस्सा आ गया है, आपका एक बच्चा हाइपर हुआ पड़ा है, आप औज़ु बिल्लाह पढ़े, थोड़ी सी आवाज से पढ़ दें, बड़े लोग तो परेशान ही हो जाएंगे कि पता नहीं मेरे ऊपर कोई दम करने लगी है, पीछे से पढ़ दें। मुझे किसी ने बताया कि अगर शौहर है या कोई सास है या घर का कोई ऐसा फर्द है कि आप मुंह पे पढ़ें तो उनको और ही गुस्सा आएगा, तो पीछे जाके ना उनके बैक पे खड़े होकर पढ़ दें, वाकई आप इसका अमेजिंग फर्क देखेंगे। तीसरा मुकाम यानी शैतान से इस्तेआज़े का, हम बिस्तरी का वक्त, यानी देखिए शौहर बीवी का ताल्लुक भी इबादत है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अल्लाह के नबी के सामने एक बच्चों की बीमारी जिसको उम्मे सिबियान कहते हैं, इसका जिक्र हुआ, तो कि बच्चों में ये बीमारी क्यों होती है, तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास आए ताल्लुक से पहले ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना वजन्निबिश शैताना मा रज़क्तना, तो अल्लाह ताला उस बच्चे को शैतान से बचाता है। वैसे भी फिर इस ताल्लुक में भी इंसान हराम हद तक नहीं जाता। फिर चौथा मुकाम इस्तियाज़े का है, जब कभी सफर के दौरान कहीं स्टॉप करें, इसको कहते हैं पड़ाव डालना, किसी वादी या मंजिल में उतरे, रस्तों में लोग जब उतरते थे ना पहले दौर में तो जंगलों में जाकर कहते थे शैतानों से पनाह मांगते हैं, ऐ इस जंगल के शैतान और इसके वादी की हिफाजत में, तो अल्लाह के नबी ने सिखाया कैसा ना करो, सूरत जिन में इसकी बात है। इतना कुछ शैतान के बारे में सुनते वक्त आपको उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा जो आज बाहर की सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, ये कुरान सुन्नत की आंख मिल जाए ना तो आप लोगों में खुश नहीं रहते, क्योंकि आप कहते हैं वो सारे प्रिकॉशंस ही नहीं ले रहे जिससे इनके बच्चे ठीक हों, जिनसे इनके घरों के माहौल ठीक हों, हम शिकवे बहुत करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों को सामने नहीं रखते। तो बहरहाल ये है कि जब भी कहीं स्टॉप ओवर हो, गाड़ी आपकी कहीं रुकी, मसलन आपने पेट्रोल डलवाना था, आप रुक गए रास्ते में, तो उस वक्त आप लें। फिर 5वीं इस्तियाज़े की जगह है गधे की आवाज़ सुनकर, यानी अल्लाह की पनाह में आना। आपने फरमाया जब तुम गधे का हिंकना सुनो तो चूंकि इसने शैतान को देखा है, जिसको इसने देखा है इससे अल्लाह की पनाह मांगो, यानी गधे को ना शैतान दिखता है, ये अल्लाह ने गधे को एक खूबी दी है, देखे है गधा इंसान से अच्छा है, कि इंसानों को शैतान को नहीं दिखते, तभी तो नहीं हम बचते, हम तो कहते हैं हाउ स्वीट, कितना प्यारा है, तो गधे को शैतान दिखता है, तो वो ये जो शोर करता है ना वो शैतान को देखता है। तो आपने फरमाया कि तुम उस वक्त आओ सुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। तो ये मौजूद है। फिर इसके बाद छठी जगह इस्तियाज़े की है मस्जिद में दाखिले के वक्त। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर नबी सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप जब मस्जिद में आते तो कहते आउज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बी वजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि व सलाम अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। तो इसमें भी आपने देखा है कि शुरू में शैतान से बचने की दुआ है। फिर सातवीं जगह इस्तेआज़े की मस्जिद से निकलते वक्त आप क्या दुआ किया करते थे, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फ़ज़लिका अल्लाहुम्मा आसिमनी मिनश शैतानिर रजीम, के अल्लाह मुझे शैतान से बचा, क्योंकि अब नमाज़ पढ़ के आया हूँ, ये ना हो कि बाहर फिर गुनाहों में आ जाऊँ। आठवां मौका इस्तेआज़े का है नमाज में वसवसा आने के वक्त। कोई भी ख्याल आता है, एक सहाबी थे उस्मान बिन अबी लास, तो कहा अल्लाह के नबी नमाज में और किरत के दौरान शैतान आ जाता है, यानी भूल जाता हूँ। तो आपने फरमाया ज़ाका शैतान, ये शैतान है जिसे खिंजब कहते हैं। तो नोट करें, अप्रोप्रिएट शैतान है तो स्पेसिफिकली उनकी ड्यूटीज बताई हुई है, तो खिंजब खा नून ज़ा बा, इसका काम नमाज में वसवसा डालना है। तो आपने फरमाया जब वसवसा देखे हो तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो 3 बार बाईं तरफ। देखिए आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके दिल में वसवसे आ गए या नमाज भूल गई, कौन सी रकत थी क्या सूरत थी, तो आप नमाज में क्या करेंगे, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर थू 3 बार ऐसे। आप नमाज के दौरान ये काम करें, जिनको पता है वो खुद समझ आएंगे कि इस वक्त आपको वसवसा आया है। हज़रत उस्मान कहते हैं जब मैंने ये किया तो मुझे फाका हो गया, यानी फिर मुझे उसके बाद ये ख्याल नहीं आया था। और इब्ने मसूद तो कहते हैं कि नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। आप दोहराएं ज़रा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम व हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, के अल्लाह मैं मर्दूद शैतान इसके वसवसों इसके तकब्बुर और इसकी थुतकार से भी तेरी पनाह में आता हूँ। इस दुआ को आगे जाके आप सीखेंगे कि ये खम से मुराद क्या है और नफ से क्या, यानी शेर गोई और इस तरह के शैतानी काम इससे मुराद है। तो इंशाल्लाह जुनून और इस तरह की चीज़ों से फिर इंसान जो है वो बच जाता है। आप देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी को हमसे कितनी मोहब्बत थी, हर मौके पे शैतान से बचने की दावत है। और फिर जो काम आज हमने किया जिस पे अमल, नवा मौका इस्तेआज़े का कुरान की तिलावत के वक्त, फैज़ा क़रातल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरत नहल की आयत 98 है, शुरू में ये मैंने बोली थी तो वहाँ भी इसको नोट कर लें कि कुरान पढ़ते वक्त शैतान से पनाह मांगो। क्यों? क्योंकि उसको बताया अब ये बंदी मेरे हाथ से जा रही है। आप कुछ भी कर लें शैतान को इतना गुस्सा नहीं आता आपके ऊपर जितना गुस्सा आपको उस वक्त आता है जब आप कुरान को समझ के पढ़ने लगते हैं। फिर इसी तरह बच्चों के लिए इस्तेआज़ा करें, अपने बच्चों को शैतान से बचने की दुआएं पढ़ पढ़ के फूकें, उससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हज़रत हसन और हुसैन पे जो दम अल्लाह के नबी करते थे वो इस बुक में हमने पढ़ा है, वही जुकुमा बि कलिमात अल्लाह तामात मिन कुल्ली शैतान व हामद व मिन कुल्ली ऐन लामत। तो अपने छोटे बच्चे बेबीज हैं, न्यू बॉर्न है, यहाँ जो बच्चों को माएँ लाती हैं घर से खूब पढ़ पढ़ा कर उनको फूक के लाया करें ताकि यहाँ के आराम से सोते रहे। और जब हमने देखा है कि जो बच्चे शुरू से ही कोर्सेज में आना शुरू हो जाते हैं ना, उनमें और दूसरे बच्चों में माएं कहती बहुत फर्क है, क्योंकि ना भी हो तो वो बेबी सिटर सुन रहे हैं जो भी हैं, आवाज तो सारी आती है ना, कभी तिलावत कभी तजवीद, तो हकीकत में मानिए इससे बच्चों को फायदा होता है। इसके बरक्स इन घरों में हर वक्त शैतानी आवाजें और इस तरह की बातें तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर इसी तरह कोई बीमार है, बीमारी के वक्त इस्तेआज़ा किया जाता है, अल्लाह के नबी भी सिखाते थे और आपको मुझे भी पढ़ना है, और ये मुझे तो ऐसे लग रहा है अब ये सारी दुआएं इस बुक की हम पढ़ रहे हैं। उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि मैं बीमार हुआ तो अल्लाह के नबी मेरे पास आए, तो आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उईज़ुका बिल्लाहिल अहदिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुन मिन शर्रि मा तजिदु। आप देख रहे हैं कितने प्यारे तरीके से अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान और रहम वाला है, मैं तेरे लिए अल्लाह जो तनहा और बेनियाज़ है जिससे ना कोई पैदा हुआ ना किसी से वो पैदा हुआ ना कोई इसका हमसर है, तो तेरे लिए इसके शर से पनाह मांगता हूँ। तो कहते हैं कि ये वो कलम है कि जिसके ज़रिए पनाह मांगी जाए तो फिर इसके अलावा कोई और खूबसूरत तरीका नहीं है। तो बहरहाल 12वां मुकाम इस्तेआज़े का, रात में नींद में वहशत हो, बेचैनी है, डर लगने लगा, एक शख्स ने आके कहा कि बेख्वाबी है, रातों को बेचैन रहता हूँ, तो आपने कहा दुआ पढ़ो, आप भी दोहरा लें, बहुत सारों को मसला होगा ये। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाही अत्तामाती मिन गदबिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमजाति शयातीनी वाई यहदुरून। मैं अल्लाह के तमाम कलेमात की पनाह पकड़ता हूँ इसके गुस्से से, इसकी सजा से, इसके बंदों के शर से और शैतानों के वसवसों से और इस बात से कि वो मेरे पास हाजिर हो। 13वां मौका इस्तियाज़े का है बुरा ख्वाब देखने पे। आपने बुरा ख्वाब देखा तो फौरन उठ जाए। अबू कतादा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। बस जब कोई बुरा ख्वाब देखे और डर जाए तो बाई तरफ थुतकारे, यानी बेड पे लेटे हुए ना तो लेफ्ट साइड पे ऐसे थुतकार दीजिए और अल्लाह से इसके शर से पनाह मांगे। और फिर इस शैतान से बचने वाली बात करे तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो उसको नुकसान नहीं देगा। फिर इसी तरह सुबह शाम और बिस्तर पर लेटते वक्त इस्तियाज़ा पढ़ना, ये 14वां मौका है। अब ये पूरी लिस्ट तैयार बाद में हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। आज के सब नोट्स जो है ना कल के ग्रुप्स में आपके साथ रिवाइज किए जाएंगे, रिकैप होगा। आप ये बहुत कुछ मैं आपको दे रही हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा दिल है कि हम इस औज़ु बिल्लाह के मौके पर शैतान की सारी चालों से बचने के छोटे छोटे तरीके तो देख लें ताकि हम बच के कल आ सकें। बहुत सारे लोगों को कल शैतान ने नहीं आने देना, पता है आपको किस किस को डर है कि वो कल नहीं आएगा। इंशाल्लाह लगता है अभी असर हो गया, इतना कुछ हमने पढ़ सुन लिया, आप डर गए। लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं कि अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दें जो सुबह शाम पढ़ूं। तो आपने उस वक्त जो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावाति वल अर्दी आलिम अल गैबी व शहादती रब्बा कुल्ली शैय व मलीका ही, ये सब दुआएं इसमें मौजूद है, फिक्र नहीं करें, सुबह शाम की दुआओं में भी हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व मिन शर्री शैतानिर रजीमी व शिर्की। के आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, जाहिर और पोशीदा को जानने वाले, हर चीज़ को पालने वाले, इसके मालिक में गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं अपने नफ्स के शर से और मर्दूद शैतान के शर और शिर्क से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आपने कहा इस दुआ को सुबह शाम और बिस्तर पर जाते वक्त पढ़ लिया करो। तो ये सारी खूबसूरत दुआएं हैं। फिर रात को अल्लाह के नबी एक और पढ़ते हैं, ये मैं आपके साथ ज़रूर कहलवाऊंगी क्योंकि हम में से बहुत सारों को ये दुआ नहीं आती। इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में जो हम दुआएं सिखाएंगे ये सारी दुआएं आप याद भी करेंगे अल्लाह के हुक्म से, इसलिए घबराएं नहीं, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी वख्सा शैतानी, ये हिस्सा है दुआ का हमारे इस मौजू से मुतल्लिक, लेकिन दुआ पूरी करते हैं। वफुक करिहानी वसक्किल मीज़ानी वजअलनी फी नदीयिल आला, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरे शैतान को दूर कर दे और मेरी गर्दन अजाब से आज़ाद फरमा, मेरी नेकी के पलड़े को भारी फरमा और मुझे बुलंद तर मजलिस वालों में शामिल कर दे। तो ये दुआ इंशाल्लाह आपको रात भर भी शैतान के शर से बचाएंगी। फिर इसी तरह अकीदे में कभी शक आए ना तो उस वक्त भी इस्तियाज़ा कहना चाहिए। 15वां ये आपको नुक्ता बता रही हूँ, हज़रत अबू हुरैरा ही की ये रिवायत है। कहा कि तुम में से किसी के पास शैतान आता और कहता है फलां को किसने पैदा किया, फलां को किसने किया, हत्ता कि ये सोच दिलाता है तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। तो यह बच्चों को भी सिखाएं, कभी बच्चे पूछे ना अल्लाह को किसने पैदा किया और हु क्रिएटेड द गॉड, तो आपने कहा कि जब ये ख्याल आ जाए तो कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि ये नहीं होना। और आखिरी वक्त हमारी ज़िंदगी का, मौत की डुबकियों में भी शैतान से पनाह मांगनी है। निज़ाक का वक्त बहुत सख्त होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबुल यसर से ये रिवायत है कि आप मौत के वक्त शैतानी हमले से अल्लाह की पनाह तलब करते थे और ये दुआ फरमाया करते थे। लंबी दुआ है, मैं सिर्फ उतना हिसाब के साथ दोहराती हूँ जो इससे मुतल्लिक है। आऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी यश्शैतानु इंदल मौत, मतलब क्या है कि अल्लाह मैं इस बात से पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ कि मेरी मौत के वक्त शैतान मुझे पागल कर दे, खपती कर दे, क्योंकि आप कहते हैं मौत की सख्तियाँ बहुत होती हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे की हैं। सुबह और शाम की दुआओं में आओ सुबह कलीमातिल्लाह तामाति मिन शर्री मा खलक भी इस्तियाज़ा है। और जब भी कभी, यानी मैं अपनी बात को यहाँ रोकती हूँ कि जब भी कभी आप डाउन फील करें, सुस्ती हो, खौफ आ रहा है या बहुत ही हंस रहे हैं, बस कभी कभी वो बंदा जुनून में नहीं आ जाता, उस वक्त पड़े हैं उस बिल्ला में शैतान निराजी। एक्सट्रीम रवैयों में, इंतहाई रवैयों में शैतान हमारे अंदर आ जाता है, बहुत गुस्से में, बहुत खुशी में, बहुत गम में, बहुत सोने से, बहुत खाने से शैतान आता है, लंबे नाखनों के जरिए शैतान अंदर आ जाता है। बस अब शैतान के बहुत सारे, वो मैंने आज टॉपिक नहीं छेड़ा, मैं कहीं जिक्र करूंगी जरूर आपसे कि शैतान के चार बहुत बड़े बड़े दरवाजे, मैं कोशिश करूंगी किसी, आजकल में कोई लेक्चर हुआ तो उसमें ये टॉपिक अलग से कवर करूँ, फिर आप में से जिसका दिल करे वो सुन सकते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे आपको बचाए, और आखिरी दो सूरतें तो हैं ही सारी शैतान से बचने की, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, और इसे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तो हर वक्त ज़ुबान को जिक्र से तर रखें, ये भी एक बहुत खूबसूरत नुस्खा होगा जिससे आप बचेंगे। इस सारे के बाद ज़रा औज़ु बिल्ला पढ़ें मिलके, सब पढ़ें, और आपकी आवाज़ों से पता चलना चाहिए कि आप शैतान से डर गए हैं। जी अल्लाह करे कि शैतान यहाँ से भाग जाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस शैतान से बचा दे, और हम बहुत पुरसकून तरीके से इस कोर्स को भी करें और अपने सारे घर के कामों को देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।